13 जून दिन बुधवार दिन भर मैं हूं रेहान फतल। दिल्ली में मुख्यमंत्री के धरने का तीसरा दिन, सरकारी कामकाज ठप।
आईएएस अधिकारी जो हैं 3 महीने से पिछले मुख्यमंत्री की मीटिंगों में नहीं आ रहे, फाइलें साइन नहीं कर रहे, किसको उससे परेशानी हो रही है? सरकार को नहीं हो रही है, गरीब आम आदमी को हो रही है।
दुनिया जहान में जानेंगे स्पेन के मंत्रिमंडल में क्यों जगह दी गई है 61% महिलाओं को।
एक काफी इसका सिंबलिज्म अटैच्ड है उसमें, मुझे लगता है जो एक जमीनी तौर पर एक जो डिमांड उठ रही थी कि इतना लो रिप्रेजेंटेशन क्यों है, और खासकर उन सोसाइटीज में जहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट काफी स्ट्रांग रहा।
चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए सरकारी बंगलों से उठे विवाद पर, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। ये नेता दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि दिल्ली में तैनात आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म करने और राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लागू किया जाए। इधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों ने राजनिवास तक मार्च कर केजरीवाल के लिए अपना समर्थन जताया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ मुलाकात करने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उत्तर कोरिया अब परमाणु खतरा नहीं रहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अब हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। इससे पहले ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों ने इस बात पर आशंका जताई थी कि दोनों नेताओं के बीच हुए समझौते का उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम पर कोई असर नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को रद्द कर दिया था। ट्रंप के अचानक किए गए इस घोषणा के बाद अब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास के रद्द होने पर जापान ने भी चिंता जताई है और कहा है कि इस प्रायद्वीप की सुरक्षा के लिए ये युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इटली के गृहमंत्री माटियो सल्विनी ने कहा है कि करीब 600 शरणार्थियों से भरे एक बचाव जहाज को अपने देश में न आने देने के लिए फ्रांस की सरकार उनकी आलोचना की है, जिसके लिए फ्रांस को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इटली सरकार ने अपनी नाराज़गी जताने के लिए फ्रांस के राजदूत को तलब किया था। इसके बाद इटली की सीनेट में साल्विनी ने कहा,
arrivo ad avere l'ambizione di parlare a nome di un popolo,
मैं यहाँ इटली के नागरिकों की तरफ से हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमें दया दिखाने, मदद के लिए हाथ बढ़ाने, स्नेह से लोगों का स्वागत करने के बारे में किसी से कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समस्या इटली और फ्रांस के बीच का वर्ल्ड कप मैच तो नहीं जिसमें हमें शामिल नहीं किया गया। यहाँ समस्या ये है कि फ्रांस सरकार में मौजूद कुछ लोग सद्भावना, सौहार्द, दया और मदद करने की भावना की आलोचना कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में वो आधिकारिक तौर पर माफी मांग लेंगे। इटली के गृहमंत्री माटियो सल्विनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब में गठबंधन सेना ने कहा है कि उन्होंने हूथी विद्रोहियों के कब्जे से यमन के मुख्य बंदरगाह हुदीदा को छुड़ाने के लिए वहां भारी हवाई हमले किए हैं। वहीं जमीन पर मौजूद सरकार समर्थित सेना का कहना है कि उन्हें शहर के भीतर जाने के लिए अभी गठबंधन सेना के इशारे का इंतजार है। यमन में आने वाली लगभग सभी मदद हुदीदा के रास्ते ही आती है। ऐसे में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि हुदीदा पर हमले का नतीजा बेहद भयानक हो सकता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
The fundamental question here and the Hodeida attack puts that question back on the table very forcefully.
सबसे पहला सवाल तो यही है और हुदीदा पर हमले के बाद अब ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या सैन्य कार्रवाई से इस समस्या का उत्तर है। हम ये मानकर चलते हैं कि बस यही एक रास्ता बाकी बचा है। हम देखेंगे कि इस हमले के नतीजे क्या होंगे, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि इससे यहाँ जारी संघर्ष नहीं रुकेगा और इसका असर यहाँ रहने वालों पर होगा। उन पर भारी दबाव पड़ेगा जो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बातचीत के जरिए इस मुश्किल को सुलझाया जाए। ये थे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। पिछले 4 महीनों से दिल्ली सरकार का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। कारण है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार के मंत्रियों का बहिष्कार। अधिकारियों का ये कदम मुख्य सचिव पर हुए हमले के खिलाफ उठाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के 3 साथियों के साथ उपराज्यपाल के कार्यालय में पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक भी राजनिवास पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बुधवार को दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में धरने पर जाकर बैठ गए। सरकार और उपराज्यपाल के बीच की ये रस्साकशी अप्रत्याशित है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने राजनिवास पर मौजूद आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं से बात की।
मैं इस वक्त दिल्ली के सिविल लाइंस के इलाके में हूं, जहां पर आज 3रा दिन है धरने का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके 3 कैबिनेट के साथी, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और गोपाल राय और सत्येंद्र जैन साहब मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ सड़क पर मौजूद हैं अलका लांबा जी, जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की। ये बताइए कि ये 3रा दिन हो गया, बीजेपी वाले यहाँ अरविंद जी के घर पर आ गए धरना देने के लिए, वो वहाँ एलजी के, ये हो क्या रहा है दिल्ली में?
देखिए, दिल्ली वाले देख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दिल्ली के गरीब आदमी की, उनके घर में इतनी महंगाई में राशन पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ही विपक्ष, जिसे पूछना चाहिए क्यों आईएएस अधिकारी जो हैं 3 महीने से पिछले मंत्रियों की मीटिंग में, मुख्यमंत्री की मीटिंगों में नहीं आ रहे, फाइलें साइन नहीं कर रहे, किसको उससे परेशानी हो रही है? सरकार को नहीं हो रही है, नेताओं को नहीं हो रही है, गरीब आम आदमी को हो रही है। दुख है कि भाजपा जो है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो सचिवालय दफ्तर है वहाँ धरने पर बैठ गई है। खुशी होती कि आप चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री जो दिल्ली के गरीब की आम आदमी की आवाज को लेकर वहां बैठे, उनका साथ देते। बहुत दुख है, राजनीति बहुत निचले स्तर पर है, लेकिन दिल्ली का गरीब आम आदमी।
बताइए कि चिलचिलाती धूप में आप लोग यहां जमा है, कहां से हैं?
तो आदर्श नगर से आए, आप बादी विधानसभा से,
ये सभी सकूर बस्ती से आए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे
लोनी से
जी, ये सारे लोग रोजे पर हैं और अपनी लड़ाई के लिए।
मैं एक चीज में जानना चाह रहा था कि ये लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये पीने के पानी की क्राइसिस हो रही है दिल्ली में और सारा काम जो है वो रुका पड़ा है, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, आरोप, प्रत्यारोप।
देखिए, दिल्ली की ना अपनी हवा है ना अपना पानी है। हवा और पानी आप देखें, जब खेत जलेंगे, खेती जलेगी, तब पूरा प्रदूषण दिल्ली के ऊपर प्रभावित करता है। पीने का पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा हमेशा गर्मी मई और जून में दिल्ली के हिस्से का पानी, जो हरियाणा की बीजेपी की खट्टर सरकार है, रोक देती है सिर्फ गंदी राजनीति करने के लिए। हम लोगों ने पूरी अब कोशिश की है कि दिल्ली के हमारे जो सूखे हुए कुएँ हैं, बावलियाँ हैं पुरानी दिल्ली की, सबको जिंदा करने के लिए, लेकिन समय लगेगा पानी के लिए। मुझे लगता है कि अगला जो है गृह युद्ध जो है वो पानी पर हो सकती है। बिल्कुल, एक राज्य का मुद्दा नहीं, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप उत्तर प्रदेश देखिए, सूखा पड़ चुका है, तो ये एक राज्य की समस्या नहीं है, सबको मिलकर।
एक चीज ये बताइए, आप तो पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं और कांग्रेस का ये आरोप है कि ये जो है पहले भी सरकारें चली हैं यहाँ पर, लेकिन इस तरह से कभी नौबत नहीं आई।
देखिए, कांग्रेस गुमराह है और गुमराह कर रही है। जब 10 साल शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उन्हें पूछिए केंद्र में किसकी सरकार थी, शीला दीक्षित जी आप ही की कांग्रेस की सरकार थी, एलजी आपके मन मुताबिक बिठाए जाते थे और किसी एलजी की हिम्मत नहीं होती थी कि आईएएस अधिकारियों को कह के काम या फाइल रोके।
लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग आए हैं, ये कॉमन एनिमी एक हो गया है आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी निशाना साध रही है और कांग्रेस,
वो तो हमेशा ही करते, हमेशा जो भी पार्टी काम करती है उसके पीछे लगते ही ये लोग। पानी हमारा सही आ रहा है, जब से ही आप जाम मस्जिद पे कोई परेशानी नहीं।
आप क्या कह रहे थे सर?
विजय बोरा नाम है मेरा। ये कॉमन एनिमी आम आदमी पार्टी इसलिए हुई है कि सिर्फ यही एक पार्टी है जो सिस्टम के बाहर है, बाकी सारी पार्टियां सिस्टम के अंदर है। सिर्फ एक पार्टी है जो सिस्टम के बाहर है, इसलिए ये सारी की सारी उसे एक पार्टी की दुश्मन हो रही है।
आम आदमी पार्टी है, एक आम आदमी को अगर फैसिलिटीज देना चाहती है, इसमें कौन से गुनाह कर रही है?
सर एक चीज बताइए, मैं खुद चांदनी चौक महिला विंग्स की प्रेसिडेंट हूँ, चांदनी चौक विधानसभा की, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या आप नहीं चाहते अधिकारी वापिस आए काम पे? सबके लिए आएंगे, कोई हमारे लिए थोड़ी ना आएंगे, सभी के लिए आएंगे। आप कह दो आपके बच्चों को फैसिलिटीज ना मिले, बोलो सबके बच्चे के लिए फैसिलिटीज चाह रहे, कोई खाली हमारे लिए नहीं चाह रहा सीएम, कोई खाली अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं लड़ता, एक आम आदमी के लिए लड़ता है। और अगर आज आप कहोगे ना मेरे से ये टोपी उतारने के लिए, मैं टोपी भी उतार दूंगी, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल के संग सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि वो जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई खाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हक के लिए लड़ाई।
लेकिन ये इस तरह की नौबत,
आप एक चीज का जवाब दे दो, आप अपने सीने पे हाथ रख के बता दो कि आप चाहते हो अधिकारी वापस आए या ना।
एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी नौबत क्यों आई दिल्ली में, और भी सरकारें रही हैं यहाँ पर, लेकिन इस तरह से काम,
जो काम करेगा उसको बोला जाएगा, जो काम नहीं करेगा।
नौबत दिल्ली आई है कि ये ईमानदार पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी नहीं है।
दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा
है, केंद्र में तानाशाही है, तानाशाही है, सरकार काम नहीं करने देता केजरीवाल को। मेरा नाम शंकर है।
आप कहाँ से
हैं? हम आरकेपुरम से।
उसी पर बैठ के लाट साहब ये सोच रहे हैं कि अपने ही उंगली से चला रहे हैं, ये नहीं है कि जहाँ सीएम है तो सीएम को दिल्ली संभालने दो ना, लेकिन नहीं, नाम के लिए
चुना है सरकार को,
काम कर रहा है उसे काम नहीं करने दे रहे,
जो अच्छा काम कर रहा है उनको करने नहीं दे रहे। इतना स्कूलों का सुधार हो गया है, शौचालयों का सुधार हो गया है, कितना काम कर रहे हैं, वो बिजली का सुधार हो गया, पानी का सुधार हो गया है, बहुत कुछ।
आपने पूछा कि ऐसी नौबत अब क्यों आई है, ऐसी नौबत अब इसलिए आई है क्योंकि पहले तो सब एक दूसरे की जेब भरते थे और सब खुश थे, अब यहाँ जेब नहीं भरी जा रही है इसलिए सब नाराज है, बाकी
काम करने जा रही है। तो सुना आपने कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एलजी को चाहिए कि वो राज्य सरकार को सरकार चलाने दें और जो फैसले हैं राज्य सरकार के उसमें अड़ंगा ना पैदा करें। सलमान रावी, बीबीसी सिविल लाइंस, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बंगले को लेकर जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। अखिलेश यादव जहां इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, वहीं सरकार की ओर से अब तोड़फोड़ के पीछे नई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा इस मामले में मुख्यमंत्री को लिखी गई राज्यपाल की चिट्ठी ने भी आग में घी का काम किया है। पूरी रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मिले सरकारी बंगले में हुई तोड़फोड़ और गायब सामान का मामला अब और गर्माने लगा है। अखिलेश यादव ने आज इस मुद्दे पर सरकार पर कई तल्ख आरोप लगाए तो सरकार की ओर से भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया गया। यूं तो अखिलेश यादव ने इस मामले में कुछ अधिकारियों पर पहले भी उंगली उठाई थी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा नाम लेकर उसे दोहराया।
क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक गए थे कि नहीं गए थे, और एक मृत्युंजय नारायण आईएएस इनोवा गाड़ी में गए थे कि नहीं गए थे, ये आईएसओ का कब से काम शुरू हो गया? ये तो आज हमारी सरकार नहीं है तो हमारे घर में टूटी टाइल ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, और सरकारें कभी नहीं रहती हैं, कल हमारी सरकार थी आज नहीं है, तो ये हो सकता है अधिकारियों को अगली बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि ढूंढ करके वो चिलम ले आए कहीं से कि देखो चिलम हमें मिली है, कोई घर खाली करके गया है उसमें चिलम मिल गई हमें।
अखिलेश यादव का कहना था कि उनके बंगले के भीतर जो भी सामान गायब मिले और जो तोड़फोड़ हुई है वो उन्हीं अधिकारियों के जरिए करवाई गई। उन्होंने दावा किया कि बंगले से वही सामान वो अपने साथ ले गए हैं जो उनके अपने थे, सरकारी नहीं। अखिलेश यादव के न सिर्फ सरकार पर लगाए गए आरोप तीखे थे बल्कि उनकी भाषा भी बेहद तल्ख थी। बीजेपी को शायद उनकी ये भाषा बहुत नागवार गुजरी और तुरंत जवाब देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मीडिया के सामने आए।
जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने चयन किया है और कुछ इंगित भी किया है, शब्दों का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तियों को इंगित भी किया है, वो उनको शोभा नहीं देती, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मैं छोटे शब्दों में कहूं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बॉडी लैंग्वेज आप सबने देखी होगी, तो जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो बौखलाया हुआ ही कुछ न कुछ बोला जाता है।
राज्यपाल राम नाईक ने भी मंगलवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने को कहा था। अखिलेश ने राज्यपाल पर भी जमकर निशाना साधा और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके भीतर कभी कभी आरएसएस की आत्मा आ जाती है। आरोप लगाने में सिद्धार्थनाथ सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अखिलेश के उस बंगले में टूटी दीवार पर सवाल खड़ा किया।
जब आप दीवार को तोड़ता है या घर को गिराता है जिसमें आप रहते हो, ये पढ़ा लिखा असभ्य समाज का व्यक्ति नहीं करता है। आपने खाली दीवार क्यों तोड़ी, उसका रहस्य क्या है, दीवार के पीछे क्या छुपा था वो आप बताइए, उसके अंदर क्या था जो तोड़ के ले जाना आपको बहुत आवश्यक लगा।
सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना था कि राज्यपाल के पत्र के बाद इस मामले की जांच में और तेजी आई है और जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन इस सवाल का सीधा जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि बंगले की चाबी जब राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई थी तो उन्होंने उसी समय सभी सामानों का मिलान किया था या नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। झारखंड के गोड्डा जिले में भीड़ ने पीट पीट कर दो युवकों की हत्या कर दी है। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मारे गए लोगों ने उनके पशुओं की चोरी की थी। मृतकों के परिजनों ने उनके पशु चोर होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि ईद से दो दिन पहले इस हत्या ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड में एक बार फिर मॉब लिंचिंग हुई है। संथाल परगना इलाके के गोड्डा जिले में अल सुबह हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। देवडांड थाना के बनकटी जंगल में मारे गए सिराबुद्दीन अंसारी और मुर्तजा अंसारी पर ग्रामीणों ने उनके जानवरों की चोरी करने का आरोप लगाया है। दोनों मृतक पास के बांछी तालझारी गाँव के रहने वाले थे। झारखंड पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग ढूलू गांव के रहने वाले हैं। उनका दावा है कि ग्रामीणों ने चोरी किए गए जानवरों को खुद ही बरामद कर लिया है। गुड्डा के SP राजू रंजन सिंह ने बताया कि मृतक पशु चोर थे। हालांकि SP यह नहीं बता सके कि अगर वे चोर थे तो उनके खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज थी या नहीं। SP राजू रंजन सिंह ने BBC से कहा,
चोर को मारा है, बस चोर गाँव के लोगों ने मार दिया। भैंस लेके चोरी करके जा रहा था
जी,
चोर को मारा।
तो इन लोगों के खिलाफ भी कोई पुराना FIR वगैरह था क्या सर, जो लोग मारे गए?
वो अभी सब छानबीन हो रहा है। वो जो मॉब लिंचिंग और वो गांव का मांस वो सब कुछ नहीं।
इस बीच मृतकों के परिजनों ने उनके चोर होने से इनकार किया है। उनका आरोप है कि झारखंड की भाजपा सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। विपक्ष ने इस घटना के लिए सरकार की आलोचना की है। गुड्डा की कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि इस घटना की निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए। बहरहाल ईद से ठीक 2 दिन पहले हुई इस वारदात के बाद इलाके में शांति कायम रख पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। रवि प्रकाश, BBC रांची।
स्पेन में सोशलिस्ट नेता पेड्रो सांचेज की अगुवाई में बनी नई सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री सांचेज के कैबिनेट में 61% से ज्यादा महिला मंत्री हैं। सांचेज इस पहल के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या महिलाओं के दबदबे वाली कैबिनेट स्पेन की समस्याओं का समाधान कर सकती है? इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने इन्हीं सवालों की पड़ताल की है।
दुनिया जहान। महिला दिवस यानी 8 मार्च को महिलाओं की हड़ताल। उस दिन स्पेन की राजधानी मैड्रिड समेत तमाम शहरों की सड़कों पर उमड़ी भीड़ को देखकर एक बार की लगा मानो देश की हर महिला फेमिनिस्ट स्ट्राइक को समर्थन देने बाहर निकल आई है। प्लेकार्ड उठाए, बैनर थामे, नारे लगाती महिलाएं। 3 महीने बाद भी वो प्रदर्शन तमाम लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाए हुए है। महिलाओं के इस अभियान को पुरुषों का भी समर्थन मिला और उस दिन हर पुरुष ने 4 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली। स्पेन के एक युवा जुआन बारबा,
हम तमाम मर्दों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सिर्फ 8 मार्च को समर्थन देने की बात नहीं है, ये इस तरफ सोचने का हिस्सा है कि कल से हम किस तरह बच्चों की देखभाल और दूसरी जिम्मेदारियां साझा करेंगे जिसे सिर्फ महिलाएं ही वो काम नहीं कर रही हों।
बार बार ऐसी सोच रखने वाले स्पेन के इकलौते शख्स नहीं थे। 2 जून 2018 को जब सोशलिस्ट पार्टी के नेता पेड्रो सांचेज देश के 7वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे तो उनके कानों में भी फेमिनिस्ट स्ट्राइक के नारे गूंज रहे थे। सांचेज साल 2014 में सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया बने थे, उसके पहले वो सुर्खियों से दूर थे। सांचेज ने पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का वादा किया था। साल 2015 और 2016 के चुनावों में मिली हार के बाद उन्हें पार्टी की कमान छोड़नी पड़ी, लेकिन वो लौटे और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी पीपुल्स पार्टी के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। रखॉय हटे और स्पेन की बागडोर सांचेज के हाथ आ गई। सांचेज ने अपनी कैबिनेट के जरिए देश की आधी से ज्यादा आबादी को नए खाब दे दिए। सांचेज की 17 सदस्यीय कैबिनेट में 11 महिलाएं हैं। उनके मंत्रिमंडल में 61% से ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं,
एक काफी इसका सिंबलिज्म अटैच्ड है उसमें। मुझे लगता है जो एक बॉटम से नीचे से जमीनी तौर पर एक जो डिमांड उठ रही थी कि इतना लो रिप्रेजेंटेशन क्यों है, और खासकर उन सोसाइटीज में जहां पर डेवलपमेंट को लेकर, जहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट काफी स्ट्रांग रहा है काफी समय से, तो वो मुझे लगता है अपने आप में एक सरकार पर और पॉलिटिकल एलीट्स पर दबाव पड़ रहा है, उसके चलते हम ये बदलाव देख रहे हैं।
लेकिन स्पेन की कैबिनेट में महिलाओं को बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व पहली बार नहीं मिला है। यूरोप की राजनीति पर नजर रखने वाली और पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावने कहती हैं कि सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में होती है तो महिलाओं को अहम पद मिलते हैं।
जब मिस्टर होजे लुइस ज़ापातेरो सोशलिस्ट पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने काफी सारी औरतों को बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे नॉमिनेट किया था। पहली बार ऐसा था जहां पर स्पेन में एक डिफेंस मिनिस्टर जो महिला थी।
लेकिन ज़ापातेरो की कैबिनेट में 50% महिलाएं थी, जबकि सांचेज ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। महिलाओं को कैबिनेट में बराबरी की जगह देने वाले कनाडा, स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों से स्पेन काफी आगे निकल गया है।
यूरोपियन जो मोस्ट प्रोग्रेसिव कहलाए जाते हैं देश, उसमें हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है। ये एटीट्यूड की औरतों को आगे लाना है और जो कैबिनेट बनाएंगे उसमें औरतों को इक्वालिटी देनी है। लेकिन बाकी सारे देशों की तरफ अगर हम देखें, जैसे अमेरिका है, वो काफी पीछे रह गई है।
दुनिया भर की सरकारों के मंत्रिमंडल के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त किसी भी देश की कैबिनेट में 52.9% से ज्यादा महिलाएं नहीं थीं। खुद स्पेन के तब के पीएम रखॉय की कैबिनेट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 38% था। लेकिन बास्केटबॉल के खिलाड़ी रह चुके सांचेज अब राजनीतिक खेल के नियम बदलने पर आमादा है। सांचेज अर्थशास्त्री है और खुद को नारीवादी बताते हैं। अपनी कैबिनेट को लेकर वो कहते हैं कि 8 मार्च को फेमिनिस्ट मूवमेंट के जरिए स्पेन में बदलाव की जो लहर दिखी, उनका मंत्रिमंडल उसका प्रतिबिंब है। इसे लेकर हर्ष पंत का क्या आकलन है वो सुनिए।
काफी हिस्टोरिक पहल है, अगर आप इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो स्पेन का इसमें रुतबा काफी बड़ा है और स्पेन की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी ऊपर हुई है।
350 सदस्यीय संसद में सिर्फ 84 सीट रखने वाले सांचेज महिलाओं को आगे बढ़ाकर कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट में महिला मंत्रियों को योग्यता के आधार पर ही जगह दी है। वैजू नरावने,
ये नहीं है कि सिर्फ नाम के वास्ते स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी औरतों को लिया, ऐसी औरतों को चुना है जिनकी क्वालिफिकेशंस बहुत जबरदस्त है, कि जिनका तजुर्बा, जिनका एक्सपीरियंस काफी है, जिन्होंने पहले भी मिनिस्टर के नाते सर्व किया है।
प्रधानमंत्री सांचेज ने अपनी करीबी मार्गारिता राबलेस को रक्षा मंत्री बनाया है। ईयू कमीशन में चीफ ऑफ बजट रही नादिया कॉल्विनो को अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। चरमपंथ रोधी अभियोजक रही डॉलर्स डेलगाथो न्याय मंत्री हैं और सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई है कॉल्वो को।
कार्मेन कॉल्वो जो है, जो पहले भी कल्चर मिनिस्टर हुई है स्पेन की, वो अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और इक्वालिटी मिनिस्टर, उनको दोनों पद दिए गए हैं।
सांचेज की महिला मंत्रियों की टीम अनुभव और योग्यता के पैमाने पर खरी बताई जा रही है, लेकिन क्या वो स्पेन के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान करने में कामयाब होंगी? इस सवाल पर हर्ष पंत कहते हैं,
चैलेंजेस तो स्पेन के सामने बहुत ज्यादा हैं। हालांकि सबसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप में, लेकिन अभी भी वो पुराने अपने जो लेवल्स हैं उसको अटेन नहीं कर पाई है। अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस, इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। अभी भी जो एक जो मुद्दे इंडिपेंडेंस कैटलोनिया का उठा था वो अभी भी नीचे कहीं पर सिमर कर रहा है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी अभी खत्म नहीं हुई है। ये मुझे लगता है ये जो समस्याएं, ये महिला या पुरुष के जो बाइनरी है उससे ऊपर है।
स्पेन का इतिहास और संस्कृति विविधता से भरी रही है। फुटबॉल के लिए दीवानगी रखने वाला ये देश बुल फाइटिंग को धरोहर की तरह सहेजता है। इसके पास 16वीं से 19वीं सदी तक दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार होने का गौरव है, तो 1936 से 1939 तक गृह युद्ध का ताप झेलने का अनुभव भी है। 20वीं सदी के चौथे से सातवें दशक तक इसने तानाशाही को भी देखा है। वैजू नरावने कहती है कि स्पेन का प्रगतिशील समाज बीते चार सालों की आर्थिक दुश्वारियों से उबर चुका है।
पिछले 3-4 बरस स्पेन के लोगों को बहुत सहना पड़ा। सैलरीज को फ्रीज कर दिया था, वेलफेयर के प्रोग्राम्स जो थे वो कट कर दिए थे, तो काफी लोगों का बुरा हाल था। लेकिन अब जो स्पेन की इकोनॉमी है वो अच्छे रास्ते पे आ गई है, मजबूत हो गई है।
अगले 2 साल में चुनाव कराने का इरादा जाहिर कर चुके सांचेस के लिए ये दौर सुनहरा साबित हो सकता है, लेकिन क्या उन्हें महिलाओं को वरीयता देने का फायदा मिलेगा? सुनिए हर्ष पंत की राय।
अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो जो इलेक्टोरल कैंपेन होगी वो जेंडर पर नहीं लड़ी जाएगी, वो मुद्दों पर लड़ी जाएगी, और मुद्दे अगर ये कैबिनेट सॉल्व नहीं कर पाएगा तो इसका फायदा पेड्रो सांचेस को उतना नहीं होगा।
लेकिन वैजू नरावने की राय इससे अलग है। वो कहती है कि आयरलैंड से लेकर फ्रांस तक महिला मुद्दों पर आवाजें लगातार तेज हो रही हैं। हर चुनाव में ये विषय प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। कैबिनेट में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर सांचेज उनके साथ सीधे जुड़ सकते हैं।
औरतों का जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण वोट हो गया है। ये सब मी टू मूवमेंट, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा औरतें हैं जो कहती हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए।
और स्पेन में महिला मंत्रियों को ऐसा मौका मिला है जब वो पुरुषों के सामने चुनौती रख सकें कि वो समानता हासिल करने के लिए उनके साथ संघर्ष करें।
दुनिया जहान पेश कर रहे थे वात्सल्य राय, और अब नजर दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर।
खेल समाचार इंदु पांडे से। ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन विनेश फोगाट इंडोनेशिया में होने वाले आगामी एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की अगुवाई करेंगी। बॉल टेम्परिंग के चलते साल भर के लिए क्रिकेट के मैदान से बाहर रहने को मजबूर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर कुछ ही दिनों में एक नई जिम्मेदारी के साथ क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं, लेकिन बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि कमेंटेटर के रूप में। इंग्लैंड दौरे पर गई ऑस्ट्रेलिया टीम को मेजबान के साथ 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है, और क्रिकेट के मैदान पर बतौर खिलाड़ी भी वो जून में वापसी करने वाले हैं। उनका प्रतिबंध समय पूरा होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन वो जून के अंत में होने वाली ग्लोबल टीम कनाडा में क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम स्पेन के साथ 5 मैचों की श्रृंखला के अपने पहले मैच में कल रात मैड्रिड में 3 गोल से हार गई। दूसरा मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 11 बजे से खेला जाएगा। रूस के कास्पियस्क में चल रही उमाखानोव मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने कल 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की स्वीटी बोरा ने फाइनल में रूस की अन्ना अनफिनो जिनेवा को हरा के स्वर्ण पदक जीता। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
फुटबॉल की विश्व संस्था फीफा ने कहा है कि साल 2026 का विश्व कप किसी एक देश में नहीं बल्कि 3 देशों के समूह में आयोजित किया जाएगा। 2026 के फीफा विश्व कप के लिए अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को एक साथ चुना गया है। स्पेन ने वर्ल्ड कप फुटबॉल के अपने पहले मैच से ठीक 2 दिन पहले अपनी राष्ट्रीय टीम के कोच यूलेन लोपेटेगी को निलंबित कर दिया है। इससे पहले स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने लोपेटेगी को अपना नया मैनेजर बनाने की घोषणा की थी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ मुलाकात करने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उत्तर कोरिया अब परमाणु खतरा नहीं रहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धरना आज 3रे दिन भी जारी रहा। इटली के गृहमंत्री माटियो सल्विनी ने कहा है कि करीब 600 शरणार्थियों से भरे एक बचाव जहाज को अपने देश में न आने देने के लिए फ्रांस की सरकार ने उनकी जो आलोचना की है इसके लिए फ्रांस को उनसे माफी मांगनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे कपिल देव, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।